स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य एक नए मोड़ का, एक नई चेतना का और एक नए संदर्भ का साहित्य है। आज़ादी एक साथ ही कई चीज़ें लेकर आई, नए मान मूल्य, नए तौर तरीके और इन्हीं से अभिषिक्त साहित्य। इस नवीनता में मोहन राकेश का प्रदेय अभूतपूर्व है। स्वातंत्र्योत्तर स्थितियों में हमारा जनमानस, हमारा जीवन कहां से कहां आ गया है, इसका सही गवाह मोहन राकेश का साहित्य है। स्पष्ट ही मोहन राकेश का साहित्य 20वीं सदी के उत्तरार्ध के जीवन और परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज है। पृष्ठ 16। नाटक को ही लीजिए, 60-70 वर्षों में उसका जो विकास हुआ है, उसमें जो नई प्रतिमाएं बनी और जो संदर्भ आए हैं, वे राकेश के सहारे अधिक गतिमान हुए हैं। गतिमानता की इस प्रतिक्रिया में राकेश का योगदान अप्रतिम है। उन्होंने भाव से विचार और विचार से सूक्ष्म संवेदात्मक स्तरों की खोज की है। इस खोज में व्यक्ति का भीतरी व्यक्तित्व ही अधिक विश्लेषित हुआ है। नाटक को रंगमंच से घनिष्ठता और अनिवार्यतः संपृक्त मानकर राकेश ने अनेक नए मार्गों का उद्घाटन व प्रवर्तन किया है। इतना ही क्यों, नाटक के क्षेत्र में राकेश की प्रयोग धर्मिता के इंद्रधनुष भी झिलमिलाते दिखलाई देते हैं। बीज नाटक और पार्श्व नाटक जैसे नामों, केवल नामों ही नहीं, कथ्य और शिल्प की ताजगी में भी के सहारे राकेश अपनी प्रयोगशीलता का परिचय देते रहे हैं। वस्तुतः राकेश अन्वेषक थे और इसी वजह से उनका समस्त साहित्य एक सजग प्रहरी और अन्वेषक का साहित्य प्रतीत होता है। कहानीकार के रूप में राकेश हिंदी की नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी कहानियों की उपलब्धि अप्रतिम है, वे क्लासिक महत्व की कहानियां हैं। राकेश को जीवन में अनेक बार मोह भंग की स्थिति से गुजरना पड़ा था, अनेक कटु अनुभवों के कटुतम घूंटों को पीना पड़ा था, अतः उनका कहानी साहित्य इस मोह भंग के त्रासद अनुभवों को हर बार एक नई शैली में अभिव्यक्त करता रहा है। उनकी कहानियों में प्रायः अकेले पड़े उस मनुष्य का चित्रण हुआ है जो आज के समाज में परिवर्तित मूल्यों और संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेले क्षणों में झेलते जाने के लिए अभिशप्त है। हाँ, यह एक सच्चाई है कि इनका अकेलापन अपने समाज से कटे हुए व्यक्ति का अकेलापन नहीं है, वरन समाज के बीच रहकर छटपटाते, घुटते और निरंतर खाली होते जा रहे मनुष्य का अकेलापन है। राकेश के कहानी साहित्य की उपलब्धि कथ्य परक तो है ही, वह अपनी शैल्पिक ताजगी के कारण भी नई पीढ़ी के लिए एक चुनौती है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि समकालीन विसंगतियों और मानवीय रिश्तों की त्रासदी का सजग और आत्मीय शिल्प में अभिव्यंजन है। कथ्य जितना दमदार और यथार्थ है, शिल्प भी उतने ही दम से युक्त है। उसमें आत्मीय और विश्वसनीय शैली का प्रयोग हुआ है। राकेश के उपन्यास उनकी कहानियों में निरूपित कथ्य के ही विस्तार हैं। वे कहानियों में जिस त्रासदी, पीड़ा, आकुलता और जटिलता बोध को अभिव्यक्त करते रहे, वही अधिक गहनता और घनता के साथ उपन्यासों में अभिव्यक्त हुआ है। अंधेरे बंद कमरे यदि हरबंस और नीलिमा की कहानी बनकर रह गया पृष्ठ 17 होता, तो यह उसकी कमजोरी होती। यह तो दिल्ली के परिवेश में सांस लेते विविध वर्गों वाले पात्रों की जीवंत गाथा है। इसमें आकर समकालीन जीवन, विशेषकर समकालीन परिस्थितियों की जटिलता में घुटते और हताश होते स्त्री पुरुषों के संबंध अपनी स्थिति के अभिव्यंजन के लिए जुबान पर भी पा गए हैं। न आने वाला कल, अस्तित्व की चिंता और उसकी सुरक्षा भावना को लेकर लिखा गया उपन्यास है। अंतराल में फिर एक बार राकेश ने कुमार और श्यामा के संबंधों और उनके संबंधों के अंतराल को चित्रित किया है। ध्यान से देखें तो राकेश की अधिकांश कहानियां और उनके सभी उपन्यास मानवीय संबंधों, विशेषकर दाम्पत्य संबंधों में आई कटुता, पीड़ा और विसंगतियों के विशद शब्द चित्र हैं। गत दो दशकों में सामाजिक जीवन और व्यक्ति का जीवन कितना बदला है, परिवेश कितना तल्ख हुआ है और मानव मन खालीपन से कितना, कहां तक तथा किन स्थितियों में भरता गया है, इसकी जानकारी के लिए राकेश की कहानियां और उपन्यास सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे रचनाकार अपने समय और परिवेश को पूरी ईमानदारी से अपने साहित्य में अंकित करता हुआ उसे विश्वसनीय बना दे। राकेश ऐसे ही सर्जक थे। नाटक, कहानी और उपन्यास लेखक राकेश ने गद्य की विविध विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। उनके निबंधों में समकालीन विषयों व जीवन की चर्चा है। वे अपनी शैली की अभिनवता के कारण निश्चय ही लोकप्रिय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्य विधाओं को भी राकेश ने छुआ है, जैसे डायरी, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, किंतु इस दिशा में वे सक्रिय नहीं रहे। अन्य विधाओं में उनका ध्यान यदि कहीं केंद्रीय हुआ है तो वह यात्रा वृत्तांत है, आखिरी चट्टान तक यात्रा संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। इसमें प्रकृति की अनाग्रत छवियां हैं, सौंदर्य की तरंगे हैं, संस्कृति का संदर्भ है और इन सब को वाणी प्रदान करने वाली अद्भुत शैली है। यात्रा परक साहित्य के इतिहास में राकेश की कृति सदैव एक ऐसी उपलब्धि बनकर जिएगी जिस पर वर्तमान पीढ़ी को नाज होगा और भावी को इससे प्रेरणा मिलेगी। राकेश का साहित्य युग साहित्य है। उसमें समकालीन युग जीवन की अभिव्यंजना है। उसमें मनुष्य के राग विराग, आसक्ति अनासक्ति, स्वीकार प्रस्वीकार, ग्रहण और त्याग, जीवन के गुह्य और जटिल संदर्भ, युग त्रासदी और उससे उत्पन्न विभिन्न मन स्थितियों का यथार्थ, विश्वसनीय और सही अंकन हुआ है। राकेश के साहित्य का सर्व प्रमुख गुण है अनुभूति की ईमानदारी और अभिव्यक्ति की निश्चल प्रसन्नता, और सबसे बड़ी उपलब्धि है समकालीन जीवन की समग्र पहचान, पकड़ और सूक्ष्म संवेदनात्मक अभिव्यक्ति। यदि विधाता ने इस मनीषी सर्जक को पृष्ठ 18 कुछ मोहलत और बख्श दी होती तो साहित्य और समकालीन जीवन का अव्याख्य उपकार होता। एक व्यक्ति वह होता है जिसकी जिंदगी सीधी और सपाट होती है और दूसरा वह जो अनेक उलटफेर, स्याह सफेद और विरोधाभासों के बीच अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। राकेश का जीवन और उसमें आई उद्वेलनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि न तो उनकी जीवन रेखा सीधी और सपाट है और न वैसी होना उन्हें प्रिय था। वे संघर्ष से शुरू करके संघर्ष में ही समाप्त हो गए। प्रारंभ और अंत के बीच जो अंतराल है वह अनेक विरोधाभासों व अंतर विरोधों से ग्रस्त है। वस्तुतः राकेश के व्यक्तित्व का जो मानचित्र है उसमें ऋजुता और सरलता कम है, वक्र और वर्तुल रेखाएं अधिक हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें रंग न हो या वे भरे ही न गए हों, वे तो हैं पर इतने क्षणिक और कच्चे कि एक रंग पर दूसरा आसानी से चढ़ता गया है। एक ओर राकेश के व्यक्तित्व में जीवनगत अव्यवस्था, उतावलापन और आवेश है तो दूसरी ओर लेखनगत व्यवस्था, अनुशासन और संयम है, सहृदयता और संवेदनशीलता है। यदि वे ममतालु और स्नेही थे, आत्मीय और पर हितैषणा के कायल थे तो दूसरी ओर उनमें विरोध का स्वर भी तीखा था। जिजीविषा, जिंदा दिली, आत्माभिमान, दोस्ती के नाम पर सब कुछ होम कर देने की प्रवृत्ति, बाहर से कह कहे और ठहाकों के बीच जीने वाले और भीतर पीड़ा का संसार लिए जीने वाले राकेश का व्यक्तित्व सागर का व्यक्तित्व था। सागर जैसे शत शत तरंगों से आहत और पवन के थपेड़ों से उद्वेलित होता हुआ भी गंभीर बना रहता है, वैसे ही राकेश भी एक मौन के साथ सब कुछ सहते रहे। उनकी सहने की प्रवृत्ति उनकी रहनी को भी व्यक्त करती थी। अंतःसलील व्यक्तित्व के धनी राकेश को कुरेदने से ही नमी पाई जा सकती थी। जब भी जिसने भी उन्हें कुरेदा, तब तब उनकी सहृदयता उभर कर सामने आती गई, और जिसने उन्हें बाहर से ही देखकर फैसला दे डाला कि वह तो अंतर विरोधों से ग्रस्त अव्यवस्थित व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी कहीं कुछ छूट गया और राकेश का व्यक्तित्व उसके लिए अपरिभाषित रह गया। मेरी दृष्टि में राकेश का असली व्यक्तित्व वह नहीं था जो बाहर से आभासित होता था, वरन वह था जो नहीं दिखाई दिया, जो उन्होंने कहा कि उसकी उपेक्षा, जो नहीं कहा वही राकेश का असली कथ्य है। उनकी कहानियां इसकी गवाही दे सकती है। उपन्यास के भीतर से यह अनकहा व्यक्तित्व झांकता है। उनकी आंखों के तल में जो छिपा था उसे कितने देख पाए, कितनों ने उसे जानकर राकेश के साथ न्याय किया। मैं समझती हूँ कि राकेश अपने साहित्य, अपनी मान्यताओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को भी विश्लेषित कर गए हैं। फिर कितनी ऐसे भी हैं जो अभी नहीं कहा जा सका है, यहाँ तक कि अनीता की कलम से भी वह अलिखित ही रह गया।